बट हैट्स ऑफ टू द एंटरप्रेन्योर्स हु आर स्टिल फाइटिंग फॉर दिस. मैंने कराची में रिसेंटली पढ़ा था
एक तो जब स्पेस के बारे में एंटरप्रेन्योर्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं ना बड़ी तकलीफ होती है. दोबारा से बोलो
एंटरप्रेन्योर्स.
नहीं वैसे वैसे
यार अब्दुल भाई हर कोई आपकी तरह सिंध बोर्ड से नहीं पढ़ गया.
The Muslims, I think they're great people.
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me,
"Welcome to another episode of Podcast Chalk. मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं बहुत सारी एपिसोड्स में नहीं आया, लेकिन इस दफ़ा न्यू ईयर एपिसोड हम आज कर रहे हैं तो आज मुझे
आपका न्यू ईयर भी लेट ही स्टार्ट हुआ. हमारा न्यू ईयर को दो तीन एपिसोड
हमारा एक ट्रेडिशन. हम अस्सलाम वालेकुम, आप सलाम करें हमें, हम आपको जवाब देंगे.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
सही बहुत बहुत
सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कीनिया, सोमालिया और युगांडा में सुनने वाले तमाम सामीन को अस्सलाम.
वैसे गाना में कोई सुनता है? मैंने देखा था कोई एक बंदा कोई गाना से बैठ कर सुन रहा होता है हमें.
हिंदुस्तान,
तो
भारत और इंडिया और सुनने वाले लोग.
नहीं फिर प्रॉपर आमंड लेकर जाए ना आप, मतलब अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक और फिर इधर से लेके इधर तक आप सबको
सारे कॉन्टिनेंट्स घुमाते हैं.
फिर अस्सलाम वालेकुम करना पड़ता.
नहीं वैसे भी अच्छा पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. मेरा नाम अब्दुल्ला है और हमारे साथ ताहा बैठे हैं.
अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई. आपने जब शुरू किया था तो ये जो सुर करके आवाज़ आई थी, ये मैं बताना चाहता हूँ लोग अगर इस गलत फहमी के ये चाय पी रहे थे, नहीं ये पानी अब्दुल्ला भाई ना सुर करके पी रहे थे.
देखिए जिंदगी
एंजॉय करते हैं अब्दुल्ला भाई,
जिंदगी का मजा लेना चाहिए.
सही है,
चार दिन की जिंदगी है, उसको भी हम वो पानी भी इंजॉय ना करें.
सही है, बिल्कुल पानी ही इंजॉय करें.
उसके बाद बैठे हैं इब्राहिम भाई.
अस्सलाम वालेकुम.
हमारी बहुत सारी एपिसोड्स में आते हैं और हमारे लिसनर्स के जो हैं
गलत बयानी है
फेवरेट स्पीकर्स में से एक हैं.
बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत.
इब्राहिम भाई लास्ट वीक तक तो हम्बल रहना चाह रहे थे, अभी तक तो पता नहीं बदल गए शायद.
उनके बाद बैठे हैं सुफियान भाई.
अस्सलाम वालेकुम.
सुफियान भाई का भी जो है फीडबैक अच्छा आ रहा है, इसलिए हमने इनको थोड़ी सी जगह दी हुई है इस पॉडकास्ट के अंदर.
वरना मैं क्या निकल जाऊंगा मैं यार, आप मुझे इनसिक्योर फील कर रहा हूं.
नहीं इन जनरल वैसे एक अच्छा फीडबैक आ रहा है और यही वजह है कि हमने इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू किया हुआ है.
सुफियान का सबसे बड़ा फैन कौन है?
सुफियान खुद है.
ये बात
खुद होगा.
सबसे बड़ा फैन आपको खुद होना चाहिए. वो बिलीव इन योरसेल्फ
मोटिवेशन जो कि आज मौजूद नहीं है. और आकिफ भाई जानबूझ के इस वजह से नहीं है, उन्होंने कहा मैं सुनना चाहता हूं एज अ लिसनर सुफियान भाई को, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. मैं तो होस्ट के तौर पे नहीं, लिसनर एज अ फैन बॉय.
आमतौर पे आकिफ भाई वो जो आमतौर कहते हैं कि हम शफल करते रहते हैं, वो शफल इसलिए करते हैं क्योंकि वो सुफियान भाई को सुनना चाहते हैं. कहते हैं सुफियान भाई उनकी कुर्सी में बैठे होस्ट की कुर्सी में. लेकिन आज मेरे ख्याल से फिर से हमने सुफियान भाई की कुर्सी.
व्हाइल यू आर एट इट, हम लोग को आई थिंक और भी लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें फीडबैक देते हैं. जैसे हमारे अरसलान भाई हैं, वो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल होते हैं जो हम लोग को जो लाइक करते हैं सुनते हैं और वो फीडबैक भी देते हैं. एक राफे भाई थे, उन्होंने हमें रीच आउट किया था ईमेल पे तो. और आई थिंक रेडिट पे भी,
रेडिट पे फ्रूट टू गो ने हमें कहा था कि वो यूनिवर्सिटी वो इन्जॉय करते हैं काफ़ी हमारी एपिसोड्स और पॉडकास्ट को और वो यूनिवर्सिटी जाते हुए सुनते हैं. अनफॉर्चुनेटली एक एपिसोड जिसकी हमारी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सफ़र की थी तो वो हम उसके लिए अपोलोजाइज भी करते हैं.
एक और खातून है जिन्होंने हमें रीच आउट किया था, माहा नाम है, आई डोंट नो उनका कंप्लीट नेम क्या है. तो वी रियली अप्रिशिएट, वो सुनती खुद भी पॉडकास्ट करती हैं, उनका पॉडकास्ट भी एक इंडिविजुअल उनकी एफर्ट है और उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं. आई डोंट नो पर पॉडकास्ट लोग बहुत ढेर सारी मार्केट में लोग आ रहे हैं पॉडकास्ट करने, सो इट इज अ गुड थिंग.
मैं सोच रहा था कि अगर हम एक पॉडकास्ट कम्युनिटी
की पॉडकास्ट करें.
नहीं हाँ एक अच्छा आइडिया है, यानी मैं वैसे ये नहीं सोच रहा था, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है. लेकिन एक पॉडकास्ट कम्युनिटी के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर अभी डेवलपिंग है, लोग आ रहे हैं इसकी तरफ हल्के हल्के, तो हम उसको भी डिस्कस करना चाहिए कि मेरे ख्याल से कि मुख्तलिफ किस्म के कौन से पॉडकास्ट हैं हो रहे. मैंने जब हमने रिसर्च शुरू की थी कि जब हम पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहे थे,
हम लोग पायनियर्स हैं, वी आर द पायनियर्स, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट
इन पाकिस्तान.
आई थिंक हम लोग
ग्लोबली पायनियर्स हैं पाकिस्तान.
वी आर डाउन टू इंट्रोड्यूस यू only after you sponsor us. मतलब उससे पहले अगर आप हमें कुछ कुछ कॉम्पनसेशन कर सकते हैं तो फिर
we are not looking for any advertisement. हमें बहुत advertisement की ऑफर्स आ रही हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं.
अच्छा सही है
बिल्कुल. unless
इब्राहिम मजाक ले,
unless
हमें सबसे पहले advertisement की ऑफर आती है सुफियान भाई और साद भाई से, क्योंकि ये अप एंड कमिंग बिजनेस टाइकून से तो यही चाहते हैं, लेकिन हम इनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो बाहर के बंदे को
आगे के पीछे एलिगेशंस लगते हैं. मेरे तो मुंह पे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं.
सिर्फ एक ब्रांड के अगर आप डिस्प्रीन बेचना चाहते हैं अपनी तो आप आ सकते हैं. हम
क्या बेचना चाहते हैं?
डिस्प्रीन.
अच्छा डिस्प्रीन.
हाँ ये सर दर्द की जो दवाई है तो हम उसको कर सकते हैं, ले सकते हैं. अदर देन नो अदर
प्रोडक्ट. व्हाई स्पेसिफिकली
प्री मैरिज जिटर्स हो रहे हैं उनका भी, बस ये तरीके ढूंढ रहे हो कि मैं किस तरह अपने आप को काम डाउन कर सकूं.
वैसे किसी की आकिफ से कोई बातचीत हुई है रिसेंटली?
आकिफ धरने में था ना, तो आकिफ से बात नहीं हो सकती.
अच्छा
कौन सा धरना हो रहा है?
तब ये धरना खत्म हो
गया. खुद धरना दिया हुआ अपने कमरे में, अपने कमरे में धरना दिया हुआ. मेरी शादी नहीं हो रही, शादी कर रहा हूं यार. ऑफ कोर्स
सही.
लेकिन मैं आकिफ के नाम पे एक शेर करना चाहता हूँ. अभी मैंने साउंड चेक के अंदर वो शेर सुनाया था.
अच्छा
मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ.
ये फायदा नहीं है, आकिफ खुद नहीं समझ नहीं
आएगा.
लेकिन ऐसी उर्दू है कि आकिफ खुद पूछ रहा होगा कि लुगत खोल कर.
आकिफ दिस इज डिक्शनरी खोल कर. फूड ऑफ थॉट, फूड फॉर थॉट फॉर यू. रात भर वो डिक्शनरी खोल के बैठेगा. हो सकता है कि जब तक आए
उर्दू में ना,
उर्दू में एमए कर चुका हूँ.
फॉर थॉट को आप उर्दू में बोले. खाना सोच के लिए,
ख्याल
ख्याल सोच के लिए,
नवाला सोच के लिए, समथिंग. एनीहाउ
भाई हमें
उस अदा से भी हूँ मैं आशना, उस अदा से भी हूँ मैं आशना, तुझे इतना जिस पे गुरूर है. दोबारा पढ़ देता हूँ. उस अदा से भी हूँ आशना मैं, नहीं गलत पढ़ गया. उस अदा से भी हूँ मैं आशना, तुझे इतना जिस पे गुरूर है, मैं जीऊँगा तेरे बगैर भी मुझे जिंदगी का शऊर.
अच्छा इसमें मैं बता सकता हूँ कि, या पहले आप आकिफ भाई को समझाने के लिए अदा का मतलब बता दें,
आशना का मतलब
बता, आशना का मतलब बता दें. और दूसरा मिसरा क्या था इस शेर का?
मैं जीऊंगा तेरे बगैर भी मुझे जिंदगी का शऊर है.
शऊर भी थोड़ा
बता, शऊर उनको समझ आ जाए. वो इतना तो शऊर रखते हैं
सारा वक्त, उनको यही बोला है तुम बेशऊर है यार, शऊर हासिल कर लो. तो डेफिनेटली उन्होंने सीख लिया होगा कुछ ना कुछ. एनी हाउ नहीं, खैर वी मिस आकिफ भाई, टू बी ऑनेस्ट हम उनको मिस कर रहे हैं. अगेन ही इज हियर विद अस इन स्पिरिट.
Let's also repeat कि आपने बताया था उनकी स्पिरिट इतनी अच्छी नहीं है.
स्पिरिट कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है उनसे. हम फिजिकल उनकी जो है वो ज़्यादा हमें पसंद आती है. एनीहाउ
इन जनरल जो हमें फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा है, और खासकर
अशर भाई. यार अशर भाई को हमने भी भेजा है दोबारा पाकिस्तान भेजा है.
दोबारा या पहली दफा?
पहली दफा पाकिस्तान भेजा, और हमने सिनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की.
पहली दफा पाकिस्तान गए हो? पहली दफा पाकिस्तान गए?
नहीं नहीं, खैर ऑब्वियसली
नहीं. पॉडकास्ट चौक की तरफ से, की तरफ
एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट हमने आकिफ साहब की,
हमने स्पॉन्सर नहीं किया. ये क्लियर कर दे आप,
बिकॉज ये देखें एक, व्हाट वाज द प्राइम मोटिवेशन? एक प्राइम मोटिवेशन थी हमें ये इनिशिएटिव जो था हमारा पॉडकास्ट चौक का, वो ये था कि आकिफ को रिश्ता मिल जाए इसके थ्रू किसी तरीके से, कुछ तो शो कर सके ना. अगर वो भी फेल हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा? यानी आकिफ विल नीड टू बी साउंड चेक पे.
सबसे पहली जो एपिसोड हमने की थी ना स्किप द रिश्ता आंटी के जो ग्रुप में, आके बड़ा बहुत ही एंथुसियास्टिक था उस,
तो हमने अशर भाई को भेजा, हमने अशर भाई को डबल डबल करने के, डबल यानी पुश के लिए कि प्लीज सी व्हाट्स हैपनिंग, वी नीड आकिफ प्लस वन टू बी बैक.
2019 में जो है हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये कि ओवरऑल अगर हम 2019 की बात करें तो इब्राहिम भाई का जो है वो निकाह हो गया 2019 के अंदर. ये बहुत Friday. बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए.
पहली एपिसोड इसी पे ही
हुई थी हमारा इंसेप्शन,
बरकत वाली एपिसोड थी, और यानी इट वाज द बेस्ट. मतलब ये कभी नहीं हम भूलेंगे कि पॉडकास्ट चौक की वो स्टार्टिंग, या जो भी क्या कहते हैं उसको.
आई थिंक हम प्लस वन और प्लस टू की बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ मैं आई थिंक फोरम पे पूछना चाहूँगा आपको,
कमेमोरेशन
के. अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि दो चार फेमस व्लॉगर्स जो हैं या मतलब सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग शेयर कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया यू नो एनिमेटेड कैंपेन चलाई थी कि आप लोग फैमिली प्लानिंग करें रिसोर्स के हिसाब से करें. तो मेरा आप सबसे भी सवाल है कि जो हम लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे थे हमारी गवर्नमेंट वाले भी, तो हमारा तो ये मानना है.
अभी आप इब्राहिम भाई की शादी की बात शुरू हुई और आपने प्लानिंग पे
फैमिली प्लानिंग
यार क्या कनेक्शन है? मेरा प्लस वन और प्लस टू की बात हो रही है. प्लस वन प्लस टू
का एक और चीज, एक डिस्क्लेमर. आपने सबके आने से पहले, ये मैं अब्दुल्ला भाई आपसे बोल रहा हूँ चूंकि आप होस्ट कर रहे हैं आज, आपने चेक किया कोई बंदा बूट तो नहीं लेकर आया आज इस शो के अंदर? कहीं बीच में उठा के बूट अगर टेबल में
जेब में तो नहीं फंसा के ले आए वो
नहीं, ये कैलिबर सिर्फ एक ही आदमी
अच्छा
और इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता।
हो सकता है कोई चप्पल लेकर आ गया हो या बूट तो
चप्पल ला सकते हैं, चप्पल की गुंजाइश है लेकिन बूट लाना जो है एक
नहीं। और मसला ये है ना कि वहाँ पे तो इमरान खान ने दो हफ्ते की सजा दी, पता नहीं अब्दुल्ला भाई यहाँ पे पता नहीं हमें दो तीन साल की सजा दे, मसला हो जाएगा पॉडकास्ट से हम बैन हो जाएंगे तो फिर कैसे रोजी रोटी कैसे चलेगी।
ओवरऑल 2019 का स्टार्ट जो है वो कुछ अच्छी।
एक मिनट, आपने मेरी बात काट रहे, मैं पूछना चाह रहा था कि हम लोग हमारा मानना ये है कि जब कोई घर में आता है तो वो अपना रिस्क लेके आता है, तो इस पर थोड़ा सा बैकलैश आ रहा था कि लोग मिडिल ग्राउंड नहीं फाइंड कर पा रहे थे कि फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो भाई आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि हमारा तो ये मानना है कि जो बंदा आता है अपने साथ रिस्क लेके आता है अपने हक का, तो क्या ख्याल है?
ये वैसे टॉपिक तो बड़े मजे का है और मैं तो समझ रहा था इसके लिए आकिफ को होना चाहिए था, क्योंकि आकिफ बहुत बड़े वो हैं प्रोपोनेंट, जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत ने वो कैंपेन चलाई हुई थी ना फैमिली क्राउड कंट्रोल, नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल,
ओपिनियन है उनका। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ढेर सारे अदनान भाई घूम रहे हैं, इतने अदनान भाई नहीं होने
चाहिए,
कम करो,
ईंट उठाओ तो ईंट के नीचे ना,
जिस गली मोहल्ले कूचे में जाओ अदनान भाई।
लेकिन मेरा भी पर्सनली मैं इसको समझता हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से जो ड्राइव है वो स्टेट लेवल पे नहीं होनी चाहिए, नेशनल पॉलिसी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को एजुकेट करें, यानी एट द एंड ऑफ द डे इशू क्या है कि जो लोग आपने इतने बच्चे पैदा किए,
आपने किसने इतने बच्चे पैदा,
यानी लोगों ने फैमिलीज में इतने बच्चे हैं वो नहीं रख पा रहे
हैं,
बगैर शादी
तरबियत नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर, तो आप ये दिस इज द रूट कॉज जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि यानी फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, आप इसको एड्रेस करेंगे, लोग अपने बच्चों की तरबियत करें, उनकी जिम्मेदारी उठाएं, जो भी आपके घर के अंदर खानदान के अफराद हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं, उनकी सही से तरबियत करें, देखभाल करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। यहाँ पर यही है ना कि अनफॉर्चुनेटली ये वाली बात है कि हम पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और अगर कि हमने उनका ख्याल भी नहीं रखना, वो घर के ऊपर भी बोझ और लोग उनको इकोनॉमी के ऊपर भी बोझ और यानी एक वो बर्डन समझा जा रहा
है। मेरा इसमें एक सवाल है,
नहीं नहीं
लेकिन अगर हम ये लोगों के अंदर ये शऊर पैदा कर दें कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उनको उनका ख्याल रखना है, जो भी फ़र्द आपके ख़ानदान के अंदर पैदा हो रहा है आ रहा है जो भी चीज है उसका ख्याल आपने रखना, उसकी तरबियत करनी है, उसके लिए प्रोवाइड करना, वो खुद ही जाविये से सोचेगा,
तरबियत या
अपने ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी खुद नहीं लेगा वो बंदा अगर आपने अगर उसको इस रिस्पांसिबिलिटी का अंदाजा।
देखिए शऊर कैसे पैदा होगा, शऊर पैदा करने के लिए मीडिया आपका एक बहुत बड़ा वेपन होता है। आपका मीडिया क्या कर रहा है, आपका मीडिया मेरे पास तुम्हों बना रहा है जो है वो मिलियन
सिनेमाज में हो रही है, उसके एडवांस बुकिंग
उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर एक औरत को अपनी ज़रूरियात के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या अपनी ख्वाहिशात पूरे करने हैं तो वो किसी दूसरे आदमी के साथ भी जो है वो जा सकती है।
अब्दुल्ला भाई मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आपसे कि मतलब मुझे तो नहीं पता कि क्या है, मैंने हाइप सुनी थी ये प्लॉट है इसका,
क्या ड्रामा का नाम प्लॉट है,
मेरे पास वो जो बड़ा
किसके पास तुम हो, यानी कौन कह रहा है कि मेरे पास तुम,
ये वो लड़की कह रही है कि मेरे पास नहीं सॉरी ये हुमायूं
के अफराद है, वो सब एक दूसरे को बोल रहे हैं वो किसी को नहीं समझ आ रहा कौन किसके पास है।
सही
है, अनफॉर्चुनेटली फिर एक अलिफ एक सीरियल आया, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, और लेकिन ये कि वो भी एक डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो पेश
आजकल MQM और काफलिक भी यही मेरे पास तुम हो नहीं तुम मेरे पास हो, ये इमरान खान के साथ जो है ना वो थ्रीवे PTI गवर्नमेंट के साथ ये चल रहा है,
ये गूगल वाली एंटी की वजह से हुआ।
ये अफवाह है, इसको किसी ने मेरे ख्याल से अभी तक वो नहीं किया।
एनीवेज
लेकिन मैं ये बात कह रहा था जो ताह भाई ने की कि शऊर दिलानी की बात है, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें जो बुनियादी
जो आवाज़ें आ रही है ना, हम बीच चौराहे चौक में बैठे हैं, चौक में बैठे हुए हैं ना, चौक पे, तो इसलिए अगर किसी को पीछे से
ये हमने ये अशर भी को हमने नीचे भेजा गाड़ी का हॉर्न
बजाने
ताकि चौक की फील आए।
तो बहरहाल नहीं, ताह साहब ने जो बात की कि हमारे यहाँ आबादी, मैं ये मेरा सवाल है, फर्ज करें कि 22 करोड़ आबादी नहीं होती, मैं कहता हूँ कि 25% कम कर दें आप आबादी, ठीक है आप 15-16 पे लेकर आ दें, क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे लोग इतनी कैपेसिटी भी है कि 15-16 करोड़ लोगों को वो एड्रेस कर सके या वो 10 करोड़ लोगों को एड्रेस कर सके. ये तो आप मुंह चराने वाली बात कर रहे हैं ना कि नहीं हमारी बात इतनी ज़्यादा होगी, दैट्स वाई वी कैन नॉट डिलीवर. आई डोंट थिंक आपके सिस्टम्स अभी जो डिलीवर करने की पोटेंशियल है वो डिलीवर कर पा रहे हैं.
तो ये थिंक पॉपुलेशन मैटर्स,
शिफ्टिंग द ब्लेम है कि भाई पॉपुलेशन देखो बहुत ज्यादा हो गई, हमसे नहीं हो रही. पाकिस्तान की पॉपुलेशन आज नहीं बढ़ी, बहुत पहले से हमेशा से सुनते में आ रहा है.
कंट्रोल ड्राइव अयूब खान के टाइम से चल रही है. जब अयूब खान का टाइम जब बहुत ही गोल्डन एरा पीरियड था हमारा, तो ये उस वक्त से पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राइव चल रही है. तो यानी कभी भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन उस लेवल पर रही नहीं कि जब हम इसको सस्टेन कर सकते या यानी उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं उस पॉपुलेशन.
और एक चीज होती है जो हर जगह पे बताई जाती है, कंपनी है उसको रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट, यानी एक उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑपरेशंस का होता है कि आपने रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह करनी है. आप अपनी आबादी को एज ए रिसोर्स देखते हैं या सिर्फ ऐसा बर्डन देखते हैं? अगर आप उसको एसेट के तौर पे देखते हैं, अगर एसेट नहीं देखते तो उसको एसेट पे किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? आपके पास इतनी बड़ी रिसोर्स है, आप उसको रिसोर्स बनाएं. आपके पास इतने ढेर सारे बंदे जो कि टैक्स पेयर बना सकते हैं आप उनको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए. आर यू इवन थिंकिंग ऑन दोज लाइंस? या आपके फर्स्ट लाइन ये है कि पहले यार बंदे, मजे की बात एक मैं आपको बता दूं, मैं और ताहा एक जगह गए थे दावत के अंदर.
ये हमारे देसी अंकल की,
देसी अंकलों की, एक अंकलों की सोच है ना. तो दावत के अंदर गए थे, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम हमने ये सुना है. वो बैठे हुए तो वो लॉयर्स वाली, जब लॉयर्स ने फेटी लगा दी थी डॉक्टर्स की, तो उसी पे बात हो रही थी कि यार ये लॉयर्स को खड़े होकर जो है ना ये सबको मार दो, सबको मार दो, सबको बम गिरा दो, सबको खत्म कर दो, उसमें से
लटका दो,
लटका दो. ये मुल्क जो है ना, ये मुल्क जो है ना 9-10 करोड़ लोगों का है. ये सिर्फ 9-10 करोड़ लोग हैं, बाकी ये लोग जो है ना ये. तो हमने उनसे भाई बोला कि ताहा साहब ने उनसे बोला कि ये सबको जो मार देंगे तो
उसमें आप भी शामिल होंगे. नहीं यानी बाकी 7-8 करोड़ बनेंगे उसमें आप भी शामिल होंगे. तो वो कह तो हंसने लगे, कह रहे नहीं नहीं हम तो बाहर बैठे हैं, हम तो वियतनाम में बैठे हुए. मैंने कहा कि सारी अय्याशी वियतनाम वालों की है ना कि हम कहें कि मुल्क के अंदर इतने बंदे फड़का भी दें और हम भी उससे बाहर रहें और हमारी भी, हम अय्याशी भी उठाएं उनके. जब वो 7-8 करोड़ बंदे बाकी रह जाएं मुल्क में, हम उससे फ़ायदा भी उठाएं. हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, हमने बाहर बैठे.
वो सेल्फ राइटसनेस कि हम शायद दूसरों से एलिवेटेड हैं, थोड़ा ऊपर हैं, और ये बाकी सब भीड़ बकरी है, इनको मार देना चाहिए, ज़िबा करो, इनको ख़त्म करो यार, ये बेवकूफ़ लोग हैं. तो ये जो मैंटेलिटी है ना सेल्फ राइचियस, एक अपने आप को वो इम्पोर्टेंस और एक लिटरली एक
प्रिविलेज,
पोटेंशियल, हाँ प्रिविलेज, ओवरली प्रिविलेज, इगोइस्टिक किस्म का जो नैरेटिव है कि ये लोग इस तरह के हैं तो इनको दे डोंट हैव एनी राइट.
ये लोअर क्लास वाले सारे ऐसे होते हैं. अभी एक न्यूज आई थी,
लोअर क्लास वाले
छोटे लोग.
मैं भी ऑफेंड हुआ हूं उससे. क्या मतलब? मैं भी ऑफेंड हुआ हूं.
अभी एक न्यूज आई थी,
मैं भी, यानी अप एंड कमिंग टाइकून तक जो है ना वो
अपने आप. अभी एक न्यूज सर्कुलेट हो रही थी लास्ट वीक में कि वो लाहौर के अंदर कुछ मैट्रिक और इंटर के लड़कों का जो है वो एग्जाम लिया उन्होंने कैम्ब्रिज उस पर उसके सिस्टम पे, तो वो सारे फेल हो गए. मतलब क्या कर रहे हैं
40% नंबर नहीं,
थर्ड क्लास, ये देसी लोग जो हैं ये मैट्रिक में पढ़ने
जा रहे हैं, किस्म के लोग हैं
ये, गरीब लोग,
इतनी गालियां पढ़. नहीं नहीं, हम यहाँ पे सार्कैज़म सार्कास्टिकली बोल रहे हैं. मैं अभी डिस्क्लेमर,
नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तैयार हूँ. आ जाए अब्दुल्ला भाई, बाहर मिले बाहर. क्या सार्कैज़म?
हम अभी अपने जो है ना फेडरल बोर्ड और कराची बोर्ड वालों को जमा करते हैं, फिर हम देखते हैं
भाई. देखें
वैसे यहाँ पे फेडरल बोर्ड किसने किया है? अब्दुल्ला भाई आपने क्या किया है?
मेरा सिंध बोर्ड है, सीरियसली मेरा सिंध बोर्ड.
चले आपका सिंध बोर्ड है. इब्राहिम भाई आपने क्या किया?
मेरा बोर्ड है, पाकिस्तान बोर्ड
नहीं.
अच्छा मैं शायद पूरी सब लोगों में शायद मैं एक एनोमली हूँ जिसने दोनों बोर्ड्स में थोड़ा दोनों सिस्टम्स ऑफ
और दोनों अच्छे नहीं किए,
दोनों में मैं फेलियर
था. तीसरा की अब जरूरत है हमें, तो वो आ रहा है ना हमारे पास, चीनी बोर्ड, चीनी एजुकेशन बोर्ड आ रहा है, वो करेंगे. बहरहाल तो मैंने ये देखा था कि मैंने अनटिल 8th क्लास तक मैं वही जिसको हम ब्रिटिश जो भी कहते हैं जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पढ़ा, और फिर मैट्रिक ऑनवर्ड्स वगैरह जो है हम पाकिस्तानी बोर्ड. तो नो डाउट के फ़र्क है, नो डाउट के उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे बहुत बेहतर है. उनके पास जो सिस्टम्स उन्होंने रखे हुए हैं, जो टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए,
अप्रोच डिफरेंट है उनकी ना,
एंटायरली मकसद डिफरेंट है उनका,
करिकुलम डिफरेंट
है, मेहनत की हुई है. एक चीज है इवन दो कि उसके अंदर भी बहुत फ्लॉज है और मुझे सब इख्तलाफात है, हर किसी को होंगे, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम से हो सकते हैं, व्हाट दे टीचिंग उससे हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट के एक जो बंदा जो है ना बस अंधा बस रट्टा सिस्टम
है, वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको कर रहे होते हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द डे वही चाह रहे होते हैं, आपको वही प्रोडक्ट निकालना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सोफिस्टिकेशन
है. हम थोड़ा सा हम पहले इसको एनलाइटन कर लें कि सिटी 92 ने कवर की थी ये न्यूज़. उन्होंने कहा था कि कुछ स्पेशल एग्जाम लिया गया ऑलमोस्ट 540 बच्चों के सैंपल बेसिस पे. तो
540 बच्चे जो कि सारे ए लिस्टर्स थे, यानी
उन्होंने ग्रेडर्स, रैंक होल्डर्स या
टॉप पोजीशन होल्डर्स,
टॉप पोजीशंस, मतलब द क्रीम ऑफ द क्रॉप थी फॉर इंटर पीपल, इंटर स्टूडेंट्स. वो लोग 40% ओवरऑल स्कोर नहीं कर पाए थे. उसमें उन्होंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, रियाजी. What is Riyazi? Does anyone know?
Riyazi is exercise.
Personal. Physical.
Maths.
Riyazi maths
होता है.
दिया था बिल्ला भाई. Riyazi maths होता है.
जी.
Wow. अच्छा. मैं भी आगे बन गया. तो वो लोग वहाँ पे भी cover नहीं कर पाए थे. And again वही.
ये भी नहीं. वो उर्दू में भी नहीं कर सके.
हाँ.
उर्दू में भी score नहीं कर सके. मतलब
नहीं यार.
Yes. ये उसमें बोल रहे थे कि even उर्दू जो अपनी जबान जिसमें हमारा बोर्ड का इंटेंसिवली पढ़ाते हैं, हमें पता है वो तमाम शायरों को लेके हर चीज, ओ लेवल या ए लेवल जो बोर्ड था नहीं कर पाए.
एक जो चीज मुझे महसूस होती है ना कि हमारी अप्रोच चेंज ही नहीं हुई एजुकेशन के हवाले से, जो फेडरल बोर्ड या सिंध बोर्ड जो भी हमारा है, जो कलोनियल टाइम के अंदर था ना, कि वो लंबे लंबे आपने ऐसे टाइप आंसर्स लिखने, आपने रट्टा मारना है, आपने ये सिलेक्टेड सवाल है आपने याद कर रट्टे लगा कर करना है. मैंने ओ लेवल के अंदर भी जो हमारे जो पाकिस्तान वाले जो सब्जेक्ट्स होते थे ना, जो मैंने ओ लेवल किया था, तो पाक स्टडीज, उर्दू और इस्लामियात, तो वो क्योंकि पाकिस्तान से जी सी ओ लेवल उसका थोड़ा डिफरेंट होता था, बाकी सब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता था. तो उसमें भी जो हमारी टीचर जो अप्रोच बताती थी ना, कहते 14 मार्क का सवाल है तो आपने डेढ़ पेपर भरना है ना, ठीक है 14 मार्क के लिए डेढ़ पेपर भरना है, 7 मार्क के लिए एक पेपर भरना है. और यानी आपकी अप्रोच यही होती थी. और जो फेडरल बोर्ड वाले हैं मेरे ख्याल से उनकी भी यही है कि इतने मार्क के लिए आपने इतना भर देना है.
बिल्कुल.
कॉन्टेंट क्या है किसी को, यानी कॉन्टेंट पे उससे इतना ज़्यादा गर्ज नहीं है जितना आपने भरना कितना.
लेकिन आई थिंक इसको हम लोग अगर इस एंगल से देखें ना, कि अभी जो हम कहते हैं ना वर्क प्लेस ऑफ द फ्यूचर जो है, जो हम लोग कह रहे हैं कि जो आज का बच्चा जो नया मार्केट प्लेस में जा रहा है अपनी जॉब ढूंढने के लिए, आप अगर देखेंगे अभी जो मेजोरिटी कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब काफ़ी सारे तो बड़े बड़े नाम, जिस तरह मैं रीड कर रहा था, आई थिंक अमेजोन, गूगल दोनों ने हटा दी ईवाई ने, मतलब यू डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट एज अ डिग्री होल्डर टू ज्वाइन, मतलब आप विदाउट डिग्री यू कैन स्टिल अप्लाई एंड गेट इन.
You can get in, but you cannot go beyond a certain position, I think.
नहीं, उस पे वो मैं
मुझे याद पड़ा
कैवियट तो नहीं पड़ा मैंने, बट आई एम जस्ट सेइंग
याहू के अंदर एक दफा हुआ था कि एक बंदा नहीं बन पा रहा था बिकॉज़ ही डिडंट हैव अ सर्टेन.
नहीं देखें, लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब, एज अ रूल ऑफ थंब, अगर इवन इफ यू आर अ डिग्री होल्डर,
यानी क्योंकि आप जिस आपने ईवाई और इनका जो ऑडिट फर्म्स है, यहाँ पे डिग्री से ज्यादा क्वालिफिकेशन की यहाँ पे
नहीं होती. मैं जनरल बात कर रहा हूँ. ईवाई इज वन ऑफ दोज कंपनीज. ईवाई में हर जगह सिर्फ ये क्वालिफिकेशन की बात नहीं आती. ईवाई में अगर फॉर एग्जांपल आप कंसल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें एज लॉन्ग एज यू कैन बुलशिट आप सब अच्छा हो जाता
है, और एज लॉन्ग एज यू ब्रिंगिंग इन गुड बिजनेस.
यस एग्जैक्टली.
जहां तक जो ऑडिट फर्म्स का जो पाकिस्तान के अंदर, और ये बाय रेगुलेशन तो आप एक सर्टेन पॉइंट आप पार्टनर तो बन ही नहीं सकते,
नहीं बन सकते
जब तक आपके पास ये
हाउएवर व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन इज के आजकल की जो इवन द बिग कॉर्पोरेट्स, मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ, उनका जो ज्यादा एम्फोसिस है ना वो डिग्री से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे आ चुका है. और हमारा अगर आप ओ लेवल और आप एफएससी के बच्चे को उठा के बोलेंगे ना कि आके प्रेजेंट करो, ठीक है आई एग्री के ओ लेवल अब पाकिस्तान में किसी की रीच में नहीं है और बाहर भी नहीं होता, बट पाकिस्तान ओ लेवल का बच्चा है ना, आके अगर आप उसको बोलोगे ना प्रेजेंट करोगे, हो सकता है वो भी अच्छा प्रेजेंटर ना हो, बट इल स्टिल बी बेटर देन एफएससी कैंडिडेट इन मोस्ट केसेस.
मुझे एक बात बताओ,
मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रहा.
नहीं तुमने एक बात की, तुमने कहा कि आजकल जिस चीज के ऊपर जोर है कि हाउ मच यू कैन बीएस in front of somebody, yani how much you
more
can
like
sell
how
yourself. How can you sell yourself?
Yani soft skill isko facilitate karti hai, zaruri nahi ki wo soft skill bs karne ke liye istemal ho, acche kaam ke liye bhi istemal ho sakti hai.
Even though uski piche wo jis cheez ko sell kar raha hai wo waqai exist karti ho nahi karti ho, but as long as he is able to sell his skill,
जो दिखता है वो बिकता वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है, मतलब हमारी कॉर्पोरेट्स के अंदर एटलीस्ट.
कॉर्पोरेट के अंदर तो हो सकता है, खुदा ना खास्ता,
नहीं जिसके
हर इंडस्ट्री में नहीं हो सकता,
जहां पे भी आपने क्लाइंट फेसिंग, जहां पे क्लाइंट फेसिंग आपका है, आप जो भी ऑडिट फर्म्स या फाइनेंशियल फर्म्स या जो भी कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर काम करते हैं, आप वहां पे देख लेंगे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपका जो वहाँ पे कुछ बंदे होते हैं टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन दे आर नॉट एट द बेस्ट टॉप पोजीशन. बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग होंगे. जो टॉप पे बंदा होता है वो टेक्निकली स्ट्रांग भी नहीं होगा, लेकिन व्हाई इज ही एट द टॉप, बिकॉज ऑफ हिज सॉफ्ट स्किल. यानी वो भाई विजन उसके पास भी होगा, जो टेक्निकली स्ट्रांग बंदा होगा, जो अपनी एक्सपर्टीज उसकी होगी, और उस कंसल्टेंसी फर्म के अंदर सबको पता है यार ये बंदा है गो टू गाय. जो टॉप पे बंदा है ना वो किसी भी चीज के लिए गो टू गाय नहीं होगा, उनका पता होगा कि ये बंदा है जिसके पास जो नॉलेज बेस है, नॉलेज एसेट है आपके आपकी कंपनी के लिए, आपके फर्म के लिए. लेकिन द गाय हु इज एट द टॉप इज
कमिंग बैक
टू कैन सेल इट टू द क्लाइंट.
लेट मी पुट समथिंग. बिल क्या नाम है उसका, स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स को हर कोई ये बोलता था कि ही वाज नॉट द टेक्निकली साउंड गाय. कुछ भी नहीं पता उसको, कोड भी लिखना नहीं आता होगा. ठीक है,
नहीं नहीं अब इतना नहीं
शायद, व्हाटएवर, लेट्स अज्यूम.
बट ही वाज नॉट 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 ऑन द
टेक्निकल साइड लेवल. वो स्टीव वॉज़नियाक जो था, वो था द ब्रेन्स बिहाइंड द फर्स्ट एंड मैक और वगैरह. हां, तो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें वही बता रहे थे कि इतने ढेर सारे साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं और वो टेक्नीशियंस हैं उनकी टीम में, प्रोग्रामर्स हैं एप्पल के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने एप्पल जो प्रोडक्ट आईफोन बनाने में पूरा अपने खून पसीना लगाया. लेकिन स्टीव जॉब्स ही वो बंदा था जिसकी वजह से आईफोन बना. बिकॉज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड यू आर क्रिएटिंग अ कंपनी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ टेक्निकल एस्पेक्ट, यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. वो एक इंजीनियर नहीं सोच सकता, उसकी सोच ही नहीं है. उसको आप बोलेंगे कि तुमने ये करना है, और वो बता रहे थे कि स्टीव जॉब्स ने इतना पुश किया था लोगों को कि पीपल लिटरली लॉस्ट देयर फैमिलीज, मैरिजेस वर ब्रोकन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये वो ट्रॉमा, क्या कुछ उसने फोर्स करके वो सब ड्रैकोनियन लेवल पे वो चला गया था, वो इज़ क्रेजी. बट व्हाट ही गॉट आउट ऑफ इट, वो स्टीव जॉब्स ही कर सकता था, उस टाइप का बंदा कर सकता
था. व्हाट इज द क्रूड टर्म फॉर गेटिंग कस्टमर लाइक दिस,
मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज समथिंग व्हिच इज यूनिक एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन. वो हमेशा एनोमली रहेगा, वो हमेशा वन ऑफ रहेगा.
मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द क्रूड टर्म फॉर गेटिंग कस्टमर्स दिस वे. आप रिगार्डलेस इंटरनली जो किया कस्टमर्स को लाने के लिए, सबसे कौन से डिवीजन का काम होता है इन अ कॉर्पोरेट, क्या मार्केटिंग ही होता है ना? एग्जैक्टली. और मार्केटिंग का सिंपल रूल ऑफ थंब क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है. अब उनके पास जो प्रोडक्ट था उन्होंने दिखाया और फिर बेचा. तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है ना, मार्केटिंग में तो स्पेसिफिक है मतलब, लेकिन उसके अलावा भी अक्रॉस डिविजन्स अब तो हर जगह पर ही आपका बात करने का तरीका, आप कितने अच्छे हो मे बी ऑन एन एक्सेल ऑन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपको मतलब
यार आई थिंक देयर इज टू मच. ये अगर हम जितना इसके ऊपर जोर दलग रहे ना, एट सम पॉइंट इन टाइम ये जो फसाड है ये ब्रेक हो जाएगा.
ये स्टैंड तो करता है टेक्निकल नॉलेज के ऊपर, और
ये इन इटसेल्फ कोई व्हाट ब्रिंग्स वैल्यू, दिस एड्स वैल्यू.
नहीं, अभी जितने ग्रेजुएट्स हैं मार्केट में कभी भी उतने नहीं थे. अब मसला ये कि ग्रेजुएट तो मेरे पास 10, भाई पहले अगर मैं बात करूँ आज मे बी लाइक 20-25 ईयर्स बैक, जब हमारी प्रीवियस जनरेशन जब काम कर रही थी, तब क्या होता था कि 10 लोगों ने अप्लाई किया तो मे बी लाइक 5 हैड गुड डिग्रीज, तो तब आपके लिए इजी था सिलेक्शन प्रोसेस. अब जब मैं 10 की बात कर रहा हूँ, लेट्स से ऑन लिंक्डइन उसने अगर अप्लाई किया है तो 10 में वेरी वेरी मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ तो भी 8-9 लोग के पास डिग्री होगी उसके अंदर, तो उसके बाद डिफरेंशिएटर क्या होता है?
मैं एक बात करता हूँ. देखिए, मेरे एक सवाल था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, जो मैंने आकिब से भी पूछा और लोगों से भी पूछा, और
हमें जज करने थे ना इंटरेस्टिंग है कि नहीं. आप
पहले से अलग ही बता दिया इंटरेस्टिंग सवाल आने वाला है,
क्योंकि मैं
मुझे तो इंटरेस्टिंग नहीं लगा सवाल.
दोनों एजुकेशन सिस्टम को साइड पे करके मैं पूछ रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग. खैर, सवाल ये, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी राइडिंग ऐप लॉन्च हुई, जो क्या नाम था उसका, करीम. उसके अंदर भी एक पाकिस्तानी बंदा था पार्टनरशिप में जिसने लॉन्च किया, आई थिंक मुदस्सिर शेखा नाम था. और हमारी अब एक और अप एंड कमिंग पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो गई, एयरलिफ्ट है. ये वो स्टार्टअप्स हैं या वो कंपनीज हैं जो कि बड़ी तेज़ी से और लोकल, हम एक कह सकते हैं कि देर इज सम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन देर, वो टैलेंट लोकल पूल है. आप देखें कि वो लोग जो हैं ये हमारी क्या गवर्नमेंट कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, किस स्कूलिंग सिस्टम से पढ़ के निकले.
शेखा वाज नॉट अ लोकल रिसोर्स.
हाँ, ही वाज बाहर का बंदा,
मैकेंजी के पार्टनर है.
वही मेरा सवाल था कि हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से लोग निकल के रिस्क क्यों नहीं लेते एंटरप्रेन्योरशिप में इस लेवल पे, क्यों वाई डोंट देते. निकलते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि मुझे किसी भी फॉर्च्यून 500 के अंदर, मुझे यूनिलीवर में, मुझे यूनिलीवर के अंदर एंट्री मिल जाए, मुझे पीएनजी के अंदर मिल जाए, मुझे एंग्रो के अंदर मिल जाए, मुझे फलाने बैंक ऑफ फलाने.
यहां पे उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि ये तो फिर वो लोग भी करते हैं जो पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं.
मैं
मतलब तो ये हुआ ना कि
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि पाकिस्तान के अंदर जनरली तौर पे ये देखा, अच्छा दे विल गो टू दीज कंपनीज, टू दीज स्टार्टअप्स जो बाहर से लोग आके बना रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, एंड दे विल डू वेरी वेल फॉर देम, खड़ा करेंगे, इतनी स्किल सेट उनके पास है कि उसको राइज कर देंगे, लिस्टेड लेवल पे लेकर भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. बट वो कभी वो इनिशिएटिव, वो विजन
खुद से नहीं.
वही मैं बोल रहा हूँ, द स्टीव जॉब्स और द बिल गेट्स दैट यू नीड और द मार्क जो भी ज़करबर्ग, आपको वो बंदे नहीं आते आपके पास से, क्यों नहीं आ रहे
वो? मेरे ख्याल से उसका यूनिवर्सिटी कभी एलिमेंट है, एक इन जनरल आपके सोसाइटी का जो एक माइंडसेट
है, व्हिच इज द
कल्चर, जो है
जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है आपका, एजुकेशन
एटमॉस्फेयर है, एजुकेशन एनवायरनमेंट
घर के अंदर ना, घर के अंदर एजुकेशन, बाहर एजुकेशन, दोस्तों के दरमियान बैठने वाली, आपके अंदर अगर वही वाली बात है कि डिग्री के लिए अगर आपको पढ़ाने को बोला जाए कि आपने डिग्री लेनी है ताकि आपने जॉब करनी और आपने आगे जाना है, द होल एम्फेसिस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का यही है।
नहीं लेकिन देखें,
मेरे ख्याल से सारी एजुकेशन सिस्टम्स का मूल यही है।
अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैंने जहां तक सुना है दे वो आपकी और स्किल्स, मतलब वो कारपेंटरी भी करवा रहे होते हैं, मैंने देखा उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर वो सारा कुछ करवा रहे होते हैं,
लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा एजुकेशन सिस्टम, फिनिश
स्कूल, वो कहते हैं कि हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं।
मैं वही कह रहा हूं क्योंकि उनकी सोसाइटी उनके कल्चर के अंदर इस तरह का है कि यहां पे एक बंदा, हमारे यहां अगर बंदे को निकल कर जॉब नहीं मिली तो वो कहेंगे यार कितना निकम्मा है, इसकी जॉब नहीं हुई, इतना अरसा हो गया, यानी एक दोस्त है बेचारे की जॉब नहीं लग रही थी, वो कहते यानी उसकी जॉब छूटी, आपकी वाइफ्स आपको ह्यूमिलिएशन मिल रही होती कि यार क्या कर रहा है यार, जा बंदे घर जाकर सुबह जाकर काम पकड़ कोई, यानी तुम घर में बैठे हुए कोई
नहीं,
काम
नहीं, लेकिन मतलब घर में भी बैठना कोई सही बात नहीं है, आप जाके हाथ पैर तो मारते हैं ना,
हाथ पैर
जॉब नहीं कर रहे, कुछ और करें आप,
पॉइंट बीइंग यानी हमारे यहाँ वो माइंडसेट है कि जॉब करनी है, कहीं पे लगा हुआ होना चाहिए, काम करना होना चाहिए, वहाँ जो क्रिएटिविटी है उसको आपको वो नहीं फैसिलिटेट नहीं किया जाता, हमारे यहाँ क्रिएटिव थॉट को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, मेरी ऑब्जर्वेशन ये
नहीं, बट
जिस तरह से वहाँ पे किया जाता है, और वहाँ पे भी हर उसमें नहीं होता, वहाँ पे भी ये एक सर्टन सेगमेंट्स के अंदर होता है, हर ये कोई अक्रॉस द बोर्ड चीज नहीं है, उनके भी यूनिवर्सिटीज वही बंदे निकाल रही होती है।
लेकिन आपने सवाल करने का, फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है मेजोरिटी जो है मोर ऑर लेस वो अमेरिकन बेस्ड है, क्यों है, क्यों वहाँ का सिस्टम, इसकी वजह है, आपको यू हैव टू थिंक अबाउट इट, वजह ये कि ठीक है हर कोई नहीं करता वहाँ पे, हर किसी को नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है करने की और लोग उसको कैप्चर करते हैं जिनके पास पोटेंशियल
है,
लोगों को मौका देते हैं जो कर सकते
हैं इब्राहिम भाई, क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं वहाँ का शहरी हूँ, मैं वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ पे मुझे सारा कुछ मेरा वहीं पे, मैं वहाँ पे जब रिस्क लेता हूँ ना तो मुझे ये पता होता है मुझे घर पे खाना खाने का मसला नहीं होगा, कम से कम यहाँ पे पाकिस्तान में तो
एक, 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 एक वो होता है, हाँ सही है, आपके पास
एक्सपेक्टेशन में तक मैं कैसे, मैं ना इस पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई थिंक थोड़ी थोड़ी पुरानी बात है कि पाकिस्तान में स्टार्टअप कल्चर क्यों डाइवर्ट हो रहा है, उन्होंने दो तीन चीज़ें उन्होंने बड़ी
आउट हो रहा है या स्टार्ट नहीं हो रहा,
मतलब जो जो बढ़ रहा था जो था वो भी खत्म हो रहा है, मतलब उतना स्टार्टअप आपको नजर नहीं आ रहा अब, तो उसके पीछे दो तीन रीजन, एक तो वो था कि लीगली जो थोड़ा बहुत इशू हो जाता है आपको, मतलब वो नहीं कि जो इलांगो भाई ने कहा था वो तो गलत था, बट जनरली एज अ स्टार्टअप आपको जो फैसिलिटेशन मिलती है ना, मतलब मे बी इन
विंडो सर्विस होना,
हाँ वो डेवलप वर्ल्ड वो नहीं मिलती, उसके अलावा सेकंडली है ना, एक तो मिलेनियल्स आर नोन फॉर देयर इंपेशेंस, मतलब जो आजकल का ये दिस इज ट्रू फॉर एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि मिलेनियल्स को जल्दी पैसा चाहिए, क्विक पैसा चाहिए, एंड
आप मिलेनियल्स कह रहे हैं
क्विक रिच स्कीम्स,
आप मिलेनियल्स
बोल रहे हैं, मिलेनियल्स
मिलेनियल्स को मिलेनियल्स बनना है इन वेरी क्विक, ये कोई रिपीट करके दिखा दे, चलें ये वो
मिलेनियल्स
मिलेनियल्स को मिलेनियल्स को मिलेनियल्स बनना है मिलीसेकंड्स में,
करके दे, लेट्स स्टार्ट, मिलेनियल्स को मिलेनियर बनना है
यार,
आपकी बारी,
मिलेनियर्स को
गला
नहीं, मिलेनियल्स को मिलेनियर्स बनना है मिली सेकंड में, मिली भगत से,
ओह
ये मिली भगत जबरदस्ती का नाम है, एक और इसे ऐसे नहीं बनना,
और जा सकता है
ठीक, मिलेनियल्स को मिलेनियर्स बनना है मिली सेकंड्स के अंदर मिली भगत से, यानी
उसके आगे कुछ डालें आपने,
थोड़ा जबरदस्ती कुछ,
आप पाकिस्तानी नहीं, आपने मसाला थोड़ी लगाया स्टोरी के अंदर, बट हाँ खैर कमिंग बैक टू द स्टूडियो, ये एक चैलेंज है, और ऑल्सो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जो मैं इनफैक्ट मैं रिसेंटली किसी का सुन रहा था कि उनका टाइम आ गया था रिश्ता वाले का, तो मतलब उनको एक पोटेंशियल रिश्ता इसलिए डिक्लाइन हुआ था, वो कह रहे थे कि इन्होंने अपना अपना काम अभी अभी स्टार्टअप किया है, तो यू नो थोड़ा टाइम इनको चाहिए होगा प्रोसेस करने में, जब थोड़ा सा वेल ऑफ हो जाएंगे फिर होगा, हाँ अगर जॉब होता तो यू नो कि आपके पास सिक्योरिटी है, आपको एटलीस्ट पैसे तो आ ही जाएंगे महीने के एंड में, तो अगेन ये चीज़ें ऑन अ सोसाइटी लेवल, ऑन अ स्टेट लेवल ये आपको हैम्पर डाउन करती हैं, एंड दिस इज किलिंग वॉट एवर जो छोटा वोट बचा हुआ भी है ना,
हाँ
जो क्रिएटिव स्पार्क है ना वो खत्म हो रहा है, बट हैट्स ऑफ टू द एंटरप्रेन्योर्स वो स्टिल फाइटिंग फॉर दिस, मैंने कराची में रिसेंटली एक पढ़ा था
एक तो जब स्पेस के बारे में एंटरप्रेन्योर्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं ना बड़ी तकलीफ होती है, दोबारा से बोलो
एंटरप्रेन्योर्स
नहीं वैसे
यार, एक और कोई आपकी तरह सिंध बोर्ड से नहीं पढ़ कर
नहीं, एक और मजा चीज बताऊँ आप लोगों को, ये जो मीम्स होती हैं इसको मैं 10 साल पहले क्या बोलता था,
मीमी मैंने
तो बोला ही नहीं था। अच्छा ये अच्छी बात ही हुई कि मैंने किसी के सामने नहीं बोला।
इब्राहिम भाई आप क्या बोलते थे मीम्स को?
कुछ भी नहीं बोलता था यार।
इस पे भी अक्सर हमारे पाकिस्तान में, मैं इनफैक्ट कल भी किसी का ट्वीट पढ़ा था कि आप अगर पाकिस्तानी हो अगर आप कोई गलती करोगे ना, जो गोरा आया होगा ना बाहर से, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आपका जो फूफो का बेटा है ना, वो अगर उसको थोड़ी बहुत आपसे चिंग्लिश आएगी तो आपका मजाक उड़ाएगा। तो अगेन आप चीज़ों को किल कर देते हो बिफोर दे इवन यू नो बिल्ड अप टू समथिंग बिग। तो लेट्स नॉट डिस्करेज, जो बंदा मीमे बोल रहा है उसको बोलने दें। आपकी
मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो अपना मजाक उड़ाया। मैंने तो
आपने बोला
आपने इनको टोका क्यों
किया? मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ, मेरा ये दूसरा तरीका।
बहरहाल लेकिन मैं इसमें ये वाली बात भी रखूंगा कि हमारे जो बिजनेसेस आप कह लें जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकला या हमारे लोकल स्कूल से या कॉलेज से पढ़ के निकले, जिन्होंने वो क्या कहते हैं अपने बिजनेस खड़े किए पाकिस्तान के अंदर, मैं कराची की अगर बात करूँ तो हमारे पास बड़े इस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, खाने पीने की हैं। और मेरा ये सवाल होता है कि भाई आपको 40 साल हो गए बिजनेस करते हुए, ठीक है, आपकी फैमिली बिजनेस था, आपने उसको एक्सपैंड क्यों नहीं किया? आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं गए? आपने अपना ब्रांड बाहर क्यों नहीं फ्रेंचाइज किया? जो अमेरिका, यूके या फलानी जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर होता है कि वो फैमिली ओन बिजनेस होते हैं, खुद बेशक बंदा जो है वो कॉलेज ग्रेजुएट ना हो व्हाटएवर, उसके अंदर इतनी अकल होती है कि मैंने इसको बड़ा करना है, इतना करना है, फ्रेंचाइज करना है मुल्क से बाहर। केएफसी अगर आप देखें या कोई भी ऐसी फ्रेंचाइज,
हम कनाट पसंद लोग हैं?
नहीं,
हमारे विजन ये नहीं होता।
एग्जांपल देता हूं,
हमने फैमिली के अंदर रखना है, बस मुट्ठी में रखना है।
मैं बताता हूं ना, इसकी एक एग्जांपल है लाहौर में।
क्रिएशन करें ना, आप लोगों को हिस्सेदार बनाए उसका, आप क्यों एक मुट्ठी में रखना चाह रहे हैं?
नहीं, वही बात है कि हम रिस्क नहीं ले रहे। हम लाहौर में गए, जो लाहौर में रहते हैं वो इससे रिलेट कर सकेंगे। वहां पे एक लस्सी वाला है, जेदा लस्सी वाला, तो अब उसके पास उसकी लस्सी की क्वालिटी ये है कि आप अगर सुबह 5-6 बजे उसके पास नहीं जाते तो आपको लस्सी नहीं मिलेगी। और वो सिर्फ 4 से 5 घंटे तक लस्सी बेचता है, उसके बाद लस्सी नहीं मिलती वहाँ पे। वो असल में दूध दही की दुकान है और उस पर लस्सी भी होती है। हम उसके पास गए,
क्या नाम है उसका?
जेदा लस्सी।
तो आप पिलाएंगे तो हम वहाँ पे आएंगे, 3-4 बजे आप जाएंगे, लाइन लगेंगे हमारे लिए, लेके आएंगे।
बाकायदा लाइन लगती है वहाँ,
आप जाएंगे हमारे लिए। आपने जवाब का सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे।
बिल्कुल पिलाएंगे, बिल्कुल पिलाएंगे,
फिर आप लगाएंगे, ला के देंगे। तो
और उसके बाद आपको
नाश्ता
तो हमने वहाँ पे उससे बात की लस्सी पीने के बाद, जब सारी रश खत्म हो गई, उसी के साथ हम बैठे। वो बड़ा मोटा तगड़ा सा आदमी, और वो जब बैठता तो और ज्यादा फैल जाता तो उससे हमने ना बातचीत शुरू की।
डोंट जज फैट पीपल प्लीज।
नहीं, इसमें कोई बुरी बात
नो फैट शेमिंग,
मैंने उसकी साइज की बात की कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो हमने उससे बात की, हमने कहा यार, वो बताने लग गया। फिर जाहिर है ऐसे लोग, वो देसी आदमी था तो उनसे बात करो तो फिर वो और ज्यादा खुल के आते हैं। तो कहता है कि मुझे जो है ना यहाँ पे 30-40 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ये दुकान जो है ना 30-40 साल से यहीं पे खड़ी है। तो वो रही थी, वो समझ रहा था कि वो अपनी तारीफ कर रहा है। तो हम वहाँ से निकले तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये 30-40 साल से यहीं पे खड़ा है। इसने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी और ब्रांचेस खोल लूँ, मैं कोई इसको एक्सपेंड कर लूँ या इसको डाइवर्सिफाई कर लूँ। नहीं,
एक एक सक्सेस स्टोरी है रैक टू रिचेस वाली जो मेरे जहन में आ रही है।
बन कबाब वाली?
नहीं नहीं,
सीरियन गाइस
बिरयानी रेस्टोरेंट,
आपका वो पोटेंशियल आइडिया।
नहीं नहीं, स्टूडेंट बिरयानी,
स्टूडेंट
हमेशा रिचेस टू रैग्स हो गया वापस,
आई डोंट नो शायद। और वो उसकी यू हैव टू थिंक अबाउट इट व्हाई, क्योंकि वो बंदा था, वो सुनने में वही था कि ठेले पे बिरयानी बेचता था, फिर उसने दुकान करी, दुकान के बाद उसने
बड़ी
दुकान करी।
मेरे पास अच्छा एग्जांपल है।
And then he was all across Pakistan, and then he went to Dubai, and he went to other regions, और वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट बिरयानी, और
उससे भी अच्छी स्टोरी है। एक चाय वाला है जो प्राइम मिनिस्टर बना, उसने दुनिया घूमी। अच्छा। उससे भी अच्छा, उससे अच्छा एग्जांपल है आपके पास?
नहीं।
अच्छा, खैर, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि उसका सबसे बड़ा रीज़न कंजर्वेटिव थिंकिंग है। एंड आई थिंक सब हम सब इससे अलाइन कर सकते हैं कि वो जो है ना, हमें 100% कंट्रोल चाहिए, एंड वी डोंट वॉन्ट एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस टू गो आउट टू यू नो एनी वन, इवन इफ इट ब्रिंग्स इन मोर पोटेंशियल। जो कंजर्वेटिव नहीं है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि अपने ट्विटर पे अपने आप को ग्लोबली प्रमोट करते हैं, और उन्होंने गोल्स फॉर 2020 डाले थे कि
रेजोल्यूशंस,
हाँ, उनकी रेजोल्यूशंस थी कि मेक सेम सेक्स रिलेशंस लीगल इन ऑल कंट्रीज, डन 123, रिमेनिंग 68, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, मेक अबॉर्शन लीगल इन ऑल कंट्रीज, डन 67, रिमेनिंग 127, पाकिस्तान इज अगेन ऑन द लिस्ट रिमेनिंग में, और अबॉलिश डेथ पेनल्टी इन ऑल कंट्रीज, done 106, remaining 92. And Pakistan is again on that.
Which itself अपनी ही वो जो है ना उसको oppose कर रहे हैं इनके जो दो points हैं।
हाँ मतलब contradict कर रहे हैं कि आप abortion legal कर दो और फिर बोलो कि
death penalty जो है वो illegal
abortion को legal करेंगे और फिर बच्चों को मारेंगे।
हाँ बच्चों को मारेंगे।
बच्चों से पहले को ये बताएं कि Amnesty International का बुनियादी काम क्या है?
आप बताएं।
What do they do?
Human rights, मेरे ख्याल से वो protect करते हैं human rights के हवाले से।
वो human rights
issues उठाते हैं और
watch के तौर पे काम करते हैं।
report करते हैं मुल्कों के इस जो laws हैं उस हवाले से क्या?
State level के ऊपर भी they go, यानी they consult and they recommend and they उनका यानी clout है proper।
जब मैं अगर थोड़ा सा सिर्फ हल्का सा explain कर दूँ, Amnesty International is a non-governmental organization with its headquarters in United Kingdom, focused on human rights. The organization claims it has more than 8 million members and supporters around the world. And they have been established for the past 58 years.
और ये उन्होंने रखा है goals for 2020 यानी ये.
Yes, exactly.
यानी आप उनसे पूछे भाई आपको फलस्तीन नहीं नजर आ रहा, आपको कश्मीर नहीं नजर आ रहा, आपको सीरिया नहीं नजर आ रहा, इराक नहीं नजर आ रहा, यानी आपको नजर आ रहा है तो ये नजर आ रहा है.
But why not you see only what you want to see?
In grand scale of things, this is a non-issue. यानी ये non-issue है कि same वो इजाजत हो जाए और डेथ पेनल्टी हो जाए और पता नहीं फजूल फजूल
प्रायोरिटीज मेस्ड अप. मैं अगर इसको थोड़ा दूसरे टैंजेंट से देखूं तो मतलब कयामत की निशानी में से भी अब लग रहा है कि मतलब इट्स ऑल यू नो द पजल इज फिलिंग इन.
लुकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर शायद ये इशू ना हो इतना बड़ा, लेकिन वहाँ पे उनके लिए इशू है. वहाँ पे एक औरत जब अगर वो चाहती है कि वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती तो वो उसके लिए ये इशू है. उसके लिए उसके दिन का खाना उसको टेंशन उसकी नहीं है क्योंकि उसको खाना मिलता है. उसको अपने बच्चों की तालीम का मसला नहीं है क्योंकि उसको तालीम वहाँ पे मिल रही है आसानी से और मयारी तालीम जो है वो मिल रही है. मसला उसके लिए ये है कि उसको बच्चे और ज़्यादा नहीं पैदा करने.
नहीं आपकी बात सही
है, उसके लिए तो इशू है.
हाँ इशू नहीं है वहाँ, यानी आप कह रहे हैं ये इशू उन मुल्कों के लिए ना, तो भाई आप मुल्कों की लिस्टें क्यों निकाल रहे हैं कि इतने मुल्कों में हो गए इतने मुल्कों में हमने बाकी करना है. तो ठीक है भाई आप फोकस करें उन मुल्कों में जहाँ पे ये मसला है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये वाला इशू नहीं है, ये लोगों के कंसर्न
नहीं. और आई थिंक मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे लोग
थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी अब आप क्यों एक तो ये कि जरूर थर्ड वर्ल्ड कंट्री एक तो कहकर हम यानी सेल्फ डेप्रिकेट कर रहे होते हैं वो ममालिक अपने आप को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह के.
नहीं आई थिंक वो वही बात वही आती है ना कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे इश्यूज को लेके आ रहे हैं जबकि हमारे पास इतने सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं. हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं अबॉलिश द डेथ पेनल्टी इन ऑल कंट्रीज वेयर एज वी आर मेकिंग सर्कमस्टांसिस फॉर देम टू जस्ट डाई आउट. मतलब जहाँ पे लोगों के पास खाने का नहीं है आप वो कंट्रीज के पास आप उनको हेल्प नहीं कर रहे, रादर यू जस्ट लेटिंग देम बी जैसे हैं और फिर इवेंचुअली यही है कि वो रिसोर्स जैसे ही डाई आउट होना शुरू होंगे लोग भी.
मैं ताहा भाई से एक सवाल करना चाहूँगा. आपने कहा कि अगर वहाँ पे इशू है तो वहाँ पे उनको अपने राइट्स का मसला है तो वो वहाँ पे करें, तो क्या ये वहाँ पे उनका राइट बनता है और हमारे मुल्कों में ये राइट नहीं बनता किसी औरत का?
यानी ये तो फिर एक एक एक, एक पंडोरा बॉक्स खोलने वाली बात कर रहे हैं आप.
यानी आप कह रहे हैं कि एक औरत के हकूक पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ हैं और अमेरिका के अंदर जो हैं उसके राइट्स मुख्तलिफ हैं.
आपने सवाल यही किया कि क्योंकि आपने पोर्ट्रे इस तरह किया अब्दुल्ला भाई के वहाँ की औरत के पास जो खातून है उसके लिए एक इशू है जो मगरब के अंदर रहती है गालिबा उसके लिए अब ये एक इशू है. हमारे यहाँ तो अभी खातून के लिए फ़िलहाल तो ये इशू नहीं है. तो जब उसके लिए ये इशू और एमनेस्टी इंटरनेशनल बेस्ड इन यूनाइटेड किंगडम तो ये जो भी इसका एजेंडा है जो भी इसका वर्ल्ड व्यू है दुनिया पे जो लेकर अपना थोपना चाह रही है रिगार्डलेस के बाकी मुल्कों के अंदर क्या है क्या वहाँ पे व्यू पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ के लोगों के क्या तासुरात हैं आप यानी आपका एक एजेंडा है जो आप इन्फोर्स करना चाह रहे हैं. तो मेरे ख्याल से अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है ये इसको मैं तो ये समझता हूँ कि ये इशू है भी नहीं. हाँ ये इशू है भी नहीं उस मुल्कों के लिए और ये ख्वातीन का ये इशू है भी नहीं थर्ड वर्ल्ड. और मैं तो कहूँगा फर्स्टली कि ये इशू मगरब ममालिक मगरबी ममालिक के अंदर भी नहीं होने चाहिए ये इशू. क्या आप अबॉर्शन कर रहे हैं यानी वहाँ पे भी एक पूरी प्रो यानी लाइफर्स की एक 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 मूवमेंट है आज़ादी की बात है अबॉर्शनिस्ट की भी एक मूवमेंट है वहाँ पे. लेकिन फनी इनफ यानी मैं थोड़ा टेंजेंट पे जा रहा हूँ कि वहाँ पे ये किस तरह काम करते हैं. एक थ्रेड आ रहा था ट्विटर के अंदर एक खातून ने किस तरह अबॉर्शन की उसकी वो प्लैंड पेरेंटहुड गई और उनको यानी वहाँ पे इतना डिसेप्टिवली प्लैंड पेरेंटहुड ऑपरेट करते हैं और ये जो अबॉर्शन प्रो अबॉर्शन जिस तरह ऑपरेट करते हैं वहाँ पे गए
प्रो चॉइस अपने आप
हो गए. हाँ प्रो चॉइस या जो तो वो एक खातून अपना इंसिडेंट बताती कि मैं एक उनके प्रेगनेंसी का
ये वेस्ट का केस है बाय द वे.
हाँ कि उनको कोई एसटीडी का केस था वो गई वहाँ पे STD کا کیس تھا, وہ پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کی
ریلیشن شپ میں تھی, ان کے ان کے بوائے فرینڈ چیٹ
کر گیا. ہاں نہیں, وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ وہیں سے پتا چلا کہ STD اس لیے ہوا کیونکہ ان کے جو بھی ان کے بوائے فرینڈ تھے انہوں نے چیٹ کیا, اور ان کو بتایا گیا کہ کیا اگر آپ نے آپ صحیح کرنا, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ, انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پریگننٹ بھی ہوں, تو اس کے لیے آپ یہ پلز لے لے گا, ٹھیک ہے, اور پلز اس طرح یوں کر کے یوں کر کے لے گا. انہوں نے پلز لیں, ظاہر سی بات ہے وہ ابورشن پلز تھیں, جو ان کو 7-8 سال بعد پتہ چلا کیونکہ اس کے جو افیکٹس ان کی باڈی کے اوپر ہوئے, ان کا یعنی ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی. وہ کہہ رہی تھی میں شاید مجھے پتہ بھی نہیں میں زندہ بچوں گی یا نہیں بچوں گی, کہتا جب بعد مجھے ریسرچ کر کے پتہ چلا, کہتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ سے, پلانڈ پیرنٹ ہوڈ والوں کو ٹیسٹ جب انہوں نے کیا ہوں گے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. انہوں نے بتایا بھی نہیں مجھے کہ میں پریگننٹ ہوں,
انہوں نے بولا کہ یہ پریگننسی روکنے کے لیے, یو آر ناٹ پریگننٹ یٹ,
یہ چوائس دی نہیں, یعنی پرو, یعنی دی ہپوکریسی از کہ پلانڈ پیرنٹ ہوڈ پرو چوائس کہتے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے اس کو چوائس دی نہیں, کہ یعنی آپ کو پتہ, یعنی ان کو انفارم ہی نہیں کیا گیا بھائی آپ کا پریگننٹ ہے, آپ کا بچہ, یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, یعنی ان کو یہ کیا نہیں, اور ان سے ڈیسیپٹیولی ابورشن کروائے گئے.
اس سے اس میں
یہ ایشو ہے وہاں کا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کو یہ پک کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ڈیسیپٹیولی بچے مروائے جا رہے ہیں وہاں پہ, یہ پک کرے نا.
اچھا ہم رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیونکہ خاص طور پر آپ, کیونکہ آپ کا پوڈ کاسٹ کے اوپر ایک امیج جو ہے وہ یہ پورٹرے ہوتا ہے,
آپ زبردستی لوگوں میں میرا امیج بھیج رہے ہیں, اگر میرا کوئی ایسا امیج,
اگر آپ کو نہیں لگتا تو آپ مت سمجھیں, مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, میرا سوال ہے, یہ سوال ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے بیس بلڈ کی, اب میرا سوال ہے, اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر چائلڈ ابیوز ایک بڑا ایشو ہے؟
بالکل,
کیا کیا چائلڈ ابیوز کو اسلامک موومنٹس جو خاص طور پر پاکستان میں ہیں, کیا انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے, یا وومن ابیوز کو ایڈریس کیا گیا, ڈومیسٹک وائلنس کو ایڈریس کیا ہے اسلامک موومنٹس نے؟
میرے خیال سے اگر اس کے یہ اگر وہ فیل کر رہی ہیں اس کو ایڈریس کرنے سے, تو اس کے اندر یعنی یہ ان کا فیلئر ہے کہ وہ ایڈریس نہیں کر پا رہی, اس کے اندر اسلامک مائنڈ سیٹ اگر کسی کا ہے یا نہیں ہے اس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, یعنی ان مائی پوائنٹ آف ویو اسلامک ورلڈ ویو کے مطابق دیز آر تھنگز دیٹ آر ایز امپورٹنٹ ایز, یعنی جتنا ہونا چاہیے, یہ دیز آر ایشوز دیٹ شوڈ بی ڈیلٹ وتھ, یعنی اسٹرکٹلی. اگر آپ دیکھ لیں چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, اگین سیم تھنگ, میں نہیں کہہ رہا کہ اسلام کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے اسپیسیفکلی اسلامک پوائنٹ آف ویو,
اسلامک پوائنٹ آف ویو کی نہیں بات ہو رہی, جو اسلامک پوائنٹ آف ویو کو پروموٹ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے,
لوگ کہتے ہیں
وہ یہ کیوں نہیں بولتے کہ چائلڈ رائٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, یہ ساری
بات میرے خیال سے کرتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے آج یعنی آپ جائیں اس پہ بات ہوتی ہے, وومنز رائٹس کے بھی کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, چائلڈ رائٹس کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, اور جب یعنی جیسا چائلڈ ابیوز کا جب کیس آتا ہے تو وہ جو کوٹ اینڈ کوٹ جو ریلیجیس طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی یہ ملا بیکورڈ, وہی سب سے اگریسولی آتا ہے, کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دو. یہاں پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے نا کہ ڈیتھ پینلٹی ختم کرو, ان کی اتنی سخت ایورژن ہے اس کرائم کے ساتھ, اس ایکٹ کے ساتھ, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کر رہا ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی دو. اب وہ الگ آرگیومنٹ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی صحیح ہے غلط ہے, لیکن یہ والا ریئیکشن آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ ریلیجیس اسلامک مائنڈ سیٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہیں سے آتا ہے ریئیکشن. یہ والا
اس آرگیومنٹ کی ایک وجہ ہے نا ڈیتھ پینلٹی, وہ کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی کیونکہ اس کا حل نہیں ہے. میں اس کو وہ نہیں کر رہا, اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا, لیکن میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ پینلٹی کیونکہ اس سے ڈیتھ پینلٹی دینے سے کیا ریپ جو کیسز ہیں ان کے اندر کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی
میرے خیال سے, وہ تو ایک ڈفرینٹ آرگیومنٹ
بلا سکتی ہے, دیٹس اے ڈفرینٹ آرگیومنٹ.
لیکن آپ نے جو سوال کیا نا کہ کوٹ اینڈ کوٹ, آپ نے ایک تو پہلے مجھے ایک باکس کے اندر بند کیا کہ آپ کا اسلامک مائنڈ سیٹ شاید
نہیں, تو آپ بول دیں میرا نہیں ہے, بول دیں میرا نہیں ہے,
نہیں آپ بولے کہ آپ نے آپ کا ایک اسلامک مائنڈ سیٹ ہے, آپ نے کیا چلے ایک اسلامک مائنڈ سیٹ کا
نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہاں کوئی برائی نہیں,
نہیں بالکل, آپ نے کہا کہ ایک اسلام سپوزڈ اسلامک مائنڈ سیٹ رکھنے والا بندہ اس کی طرف سے یہ آتا ہے کہ چائلڈ ابیوز اور وومنز رائٹس آر ناٹ ایشوز ایٹ آل, یعنی ایک یہ پرسیپشن ملتا ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایگزامپل تو یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو ان چائلڈ ابیوز سے کیس کا نا ملا جائے اسی طبقے کی طرف سے, اسی سیکشن کی طرف سے وہ اتنی سخت سزا کی وہ ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ ان کو وہیں پہ سر عام یعنی لٹکانا چاہیے اور پھانسی دینی چاہیے اور ڈیتھ پینلٹی دینی چاہیے, یعنی ایک یہ بھی ایک ان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنا صحیح ہے غلط ہے, وہ ایک الگ بحث ہے.
بٹ گوئنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ جو عبداللہ بھائی نے کیا کہ امریکہ کے اندر اگر اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے ایک عورت کا, لیکن باقی جگہوں پہ مسئلے جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, فیمنزم کے اندر ایک کیٹیگری آتی ہے انٹرسیکشنل فیمنزم کی, انٹرسیکشنلٹی اس کو کہتے ہیں. وہ فیمنزم بیسیکلی یہ کرتی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ فیمنزم ایون دو اٹ اسٹارٹیڈ آؤٹ ایز اے پیورلی وائٹ وومن موومنٹ رائٹس کے لیے امیریکا کے اندر, ویسٹ کے اندر, لیکن چونکہ بلیک عورتوں بلیک وومین کے اپنی ایشوز ہیں اور جو دیسی ہیں ان کی اپنی ایشوز ہیں اور افریقن اور انڈین اور فلانا 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 وومنز ہیو دیئر اون ڈفرنٹ سیٹ آف ایشوز, تو ان کے اندر ایک اکراس دا بورڈ یعنی ان کی جو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک جو ویلیو, یو کین ناٹ امپوز کہ وائٹ وومن کا جو ایشو ہے نا وائٹ وومن رائٹس کو ہم انڈیا کے اندر جا کے امپوز کریں یا ہم پاکستان کے اندر امپوز کریں ہم افریقہ کے اندر امپوز کریں, دے ہیو اے ڈفرنٹ سیٹ آف سرکمسٹانسز اینڈ ڈفرنٹ سیٹ آف رائٹس ان کو چاہیے اور ان کے ڈفرنٹ ایشوز ہیں, تو وہ اس چیز کو بیسکلی ایڈریس کرتا ہے. یہ فیمنزم کا ایک اور ایک لیول ہے. ہیونگ سیٹ دیٹ ریگارڈ لیس فیمنزم کے حوالے سے جو بھی ہے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک ایسا گلوبل پلیٹ فارم ہے جو کہ اوپنلی ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ ہم سوشل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں مختلف کنٹریز میں جا کے. میرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ کین وی الاؤ دیٹ ایٹ اے گلوبل اسکیل, کنسیڈرنگ کہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا فینومینا, جو کلچرل فینومینا ہے کسی بھی کنٹری کا, اس کا ریلیجیس ایسپیکٹ, اس کا کلچرل ایسپیکٹ, اس کا سوشل, اس کا فائنینشیل, وٹ ایور, ہاں جو بھی آپ کا اپنا ملک ہے یو کے, آپ 100 چیزیں کریں وہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ جاتے ہیں آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے اس کنٹریز کے اندر اور اس کنٹریز کے اندر ہم اپنا پروگرام امپوز کریں گے, فرسٹ کریں آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس, اور آپ نے ہیومن رائٹ جس کو آپ ہیومن رائٹ سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہوں گی جو یونیورسل ہوں گی, کچھ چیزیں یونیورسل نہیں ہوں گی, آپ نے خود ڈرائیو کیے نا, یو میڈ دوز ہیومن رائٹ چارٹر, آپ نے خود ہی کریٹ کیا اپنے, اور آپ وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں سب کے اوپر. فرض کریں کہ کوئی اسلامک کنٹری کھڑا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے کہ ہم اپنی اسلامک ہیومن رائٹ جس کو ہم ہیومن رائٹ سمجھتے ہیں, مثال کے طور لسٹ آف کنٹریز ہم نے نکالی اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لسٹ آف کنٹریز ہے, اس کے اندر تو حجاب کا یہ لیول ہونا چاہیے, اس کے اندر تو مردوں کو جو ہے نا یہ, اور سنیما کے اندر جو آر ریٹڈ اور یہ پورنوگرافی اور یہ پروسٹیوشن اور یہ سیکس ورکر اور یہ فلانا یہ ختم کرنا ہے, دنیا کے اندر کیا اس کا امپریشن جائے گا؟
پاکستان کے اندر یہ لسٹ نکلے, عمران خان صاحب یہ لسٹ نکالیں کہ اتنے ملکوں کے اندر ڈیتھ پینلٹیز نہیں ہیں, ہمارا گول فار 2020 ہے کہ ڈیتھ پینلٹیز ہوں, اتنے ملکوں کے اندر اگر سیم سیکس ریلیشن شپ الاؤڈ ہے, اتنے ملکوں کے اندر اس کو ہم ڈس الاؤ کرنا ہے, ہمارا گول یہ کہ ڈس الاؤ کریں, دنیا اس کو کس طرح دیکھے؟
میرا سوال یہ ہے کہ میرا تو فنڈامنٹل سوال ہے, وائی شوڈ وی,
میں جواب دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہوں تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں باقی لوگوں کو بھی بتاؤں کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے.
میں بالکل اس سے اگری کر رہا ہوں.
تو اگر میں یہ سمجھوں گا کہ سزائے موت یا جو زانی ہے اس کو یہ سزا ملنی چاہیے یا چوری کرنے والے کو یہ سزا ملنی چاہیے, تو مجھے دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیے کیونکہ یہ اس کا حل ہے, یہی کروں گا نا میں. لیکن جب یہی کام وہ کر رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے.
بالکل میں آپ کی بات سے اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہاں وہ آئیں, وہ اپنا ایجنڈا پٹ فارورڈ کریں اور اس کو اسپریڈ کریں. جو لوگ دوسرا ورلڈ ویو رکھنے والے ہیں, جو اسلامک اس کے طریقے سے چیزوں کو اگر اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو جب بات کی جاتی ہے کہ یہ ملک یعنی یہ ان کے یہ نظریات ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو بیک لیش ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ قسم کا ایک بیک لیش ہوتا ہے. آپ وہاں پہ جو
آپ کو اسپیس بھی نہیں ملتی آپ کی بات کہنے کی, آپ کو پہلے ہی باکس کر دیا تھا کہ یہ تو ہیومن رائٹس ابیوزرز ہیں, یہ تو اینٹی ہیومن رائٹس ہیں, ان کی ہیومن رائٹس کی تو کوئی وقت ہی نہیں 21st century کے اندر.
اب مثال آپ کے سامنے
اس کی وجہ ہے نا,
اسکینڈینیوین ممالک کی آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون ہاتھ نہیں ملانا چاہتی ہے, کوئی بچہ ہاتھ نہیں اسکول میں یا سوئمنگ کے اندر مکس سوئمنگ کے اندر ہی نہیں حصہ لینا چاہتا, یو کے کے اندر اگر کسی نے پروٹیسٹ کر دیا LGBT کے اوپر یا اس نے کہہ دیا کہ یہ گناہ ہے کوٹ ان کوٹ دس از اے سن, تو اس پہ اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے. یعنی آپ خود ہی دیکھ لینا کہ دیر از سچ اے ڈسپیرٹی, سچ کانٹرڈکشن ان ویلیوز دیٹ دے دیم سیلوز یعنی جو ایکسپاؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر خود اتنی کانٹرڈکشن ہے, دیٹ از آئی تھنک دیٹ از شوڈ بی دیٹ شوڈ بی ایڈریسڈ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس طرح ان کو آزادی ہے نا اپنے نظریات کرنے کی, تو دوسرے لوگوں کو بھی
ہمارا چونکہ کلیکٹیولی میں اب آپ کی بات کر رہا ہوں, کلیکٹیولی میرے خیال میں پاکستان ایز اے نیشن جو میجور بلک آف دا پیپل دے لک ایٹ دیز آرگنائزیشنز ود اے ہیوج کوشچن مارک, ٹھیک ہے نا, بہت اسکیپٹیسزم ہے, ہونی بھی چاہیے, بیکاز یہ آتے ہیں اپنے پروگرام جو بہت سارے ورلڈ کیا کہتے ہیں جو IMF جو ہے یا آپ وہ کون سا فورم ہے UNO کے علاوہ جتنے بھی بڑے فورمز ہیں
HRC
ہو گیا, وہ جب اپنے ایجنڈاز پروگرامز لے کر آتے ہیں تو دے کم ود دیئر ایجنڈاز, وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں, انکنڈیشنل نہیں ہوتے, وہ سرٹن پش کرتے ہیں اپنے
ورلڈ بینک
اور ورلڈ بینک ہو گیا فلانے, تو سارے لوگ اور ہمارے لوگ اس پہ پھر یہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی ایک تو فرنٹ ڈیلنگ ہے نا, بیک اینڈ پہ کیا ڈیلنگ ہوتی ہے, کنٹری اسٹیٹ لیول پہ کیا بات ہوتی ہے, वो क्या कहते हैं कि हम प्रोग्राम को ये इम्पोज करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये फलाना करेंगे, तो फिर क्या होता है कि पीपल स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग दैट दे स्टैंड फॉर. मिसाल के तौर पे मलाला, मलाला इज़ अ ह्यूज इशू हमारे कंट्री के अंदर, कंट्रोवर्शियल, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स. मलाला यूसुफ जई के साथ जो भी हुआ, गलत हुआ, एवरीबडी नोज, सब कुछ हो, लेकिन होता ये है कि वन एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप गोइंग टू दोज प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते उन प्लेटफॉर्म्स को. वी डोंट थिंक दे हैव द बेस्ट इंटेंशन फॉर अस. तो क्या होता है फिर मलाला यूसुफ जई जैसे और बाकी लोग जो कि हो सकता है अपनी जगह पर वेल इंटेंशन हो,
यूज होते,
वो यूज हो जाते हैं, दे बिकम द पोस्टर चाइल्ड फॉर दोस प्रोग्राम्स. लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं एंड वी डोंट लाइक इट. हमें नहीं पसंद कि हमारी हमारे कंट्री की जो बंदी है वो, या जो लड़की है जिसके साथ ज्यादती हुई, जिसके साथ जुल्म हुआ, सब कुछ हुआ, she starts becoming this ping pong ke wo samal kar rahe hain fir hum unko back and forth kar rahe hain.
nahi uski wajah ibrahim bhai main sorry aapko cut kar raha hu, uski wajah kyunki aap mujhe aisi ngos ginwa dein pakistan ke andar, aisi kuch aap mujhe teen ngos ginwa dein jo human rights ke upar is pace ke sath aur itni you could samjhe ki itni वोकल हो वुमेन राइट्स या चाइल्ड अब्यूज के ऊपर. आप मुझे तीन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बड़ी बड़ी,
मैं वर्किंग वुमेन फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर है, बहुत अच्छी ग्राउंड लेवल. नहीं, वर्किंग वुमेन फाउंडेशन, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, आप जिस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, देखें एक एक ग्लोबल लेवल के ऊपर डॉलर से फंडेड, यूएस एड के थ्रू से आ रही है, और आप बोल रहे हैं, और जिनके हाथ में मीडिया है, आप बोल रहे हैं कि मुझे वही वोकल लेवल दिखाएं, वही एक्सपोजर, वही प्रोजेक्शन दिखाएं.
नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसी लेवल की जो है प्रोजेक्शन होनी चाहिए.
मैंने देखी है पाकिस्तान के अंदर, नहीं, आप ग्राउंड लेवल पे देखा है, ग्राउंड लेवल पे जो बेचारी बेवाएं औरत हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली भी पीछे हैं, जिनकी ऑर्फन्स के अंदर प्रैक्टिकल लेवल पे काम करके इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन औरतों को स्किल बनाना, उनकी स्किल सेट तैयार करना, उनको माशरे के अंदर उनको सेटल करना, उनको हमारी लोकल एनजीओ जितना काम कर रही, इंटरनेशनल एनजीओ वो काम नहीं कर रही, और विदाउट डिस्टर्बिंग उनकी वैल्यू सिस्टम चेंज नहीं करना चाह रही. वैल्यू सिस्टम नहीं चेंज करनी, तुम ये बिलीव करो और तुम्हें इसको एडवोकेट करना पड़ेगा बिकॉज हमने तुम्हें ये काम, हमने तुम्हें एक्सपोजर,
विल टेल यू व्हाट्स राइट,
विल टेल यू व्हाट्स राइट एंड विल टेल यू व्हाट्स रॉन्ग. नहीं, आप उसका प्रैक्टिकल, आप उसका इश्यू सॉल्व करें. हाँ, हमारे माशरे के अंदर बहुत ढेर सारी दकियानूसी मेंटेलिटी है, बैकवर्ड मेंटेलिटी एग्जिस्ट करती है, खवातीन के साथ जुल्म होता है, खवातीन एक ऐसी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, वीक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, बच्चे भी उससे हैं, बूढ़े भी उसका हिस्सा हैं, ये इनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, वो आपको डेफिनेटली
एड्रेस
करना चाहिए. और हम लोग तो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये वाला इशू जितना लोकल लेवल पर इसको लोग खड़ा करें, चाहे वो इस्लामिक माइंड सेट का हो, चाहे वो नॉन इस्लामिक माइंड सेट का हो, अगर आप इन चीज़ों के बारे में सेंसिटिव हैं, आप इन इशूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. हाँ, ये नहीं हो सकता कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या इन जैसे को बताया कि अगर बूढ़ा बंदा है तो उसके लिए ओल्ड होम्स क्रिएट करना शुरू कर दें. हम ओल्ड होम्स का हमारा कल्चर नहीं है, हम नहीं उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते. हाँ, मजबूरी के तहत होता है, लेकिन हम कोशिश ही करते हैं कि जो जिस घर के अंदर इशू, माँ बाप, अगर माँ बाप के साथ ज्यादती हो रही है तो हम उसकी, उस बंदे को ह्यूमिलिएट, एजुकेट, जो लेवल हम कहेंगे हम उसको करना चाहिए. वी डोंट वांट टू गो टू दैट
पॉइंट. मुझे ये समझ में आती है कि अगर जिस दिन हमने इतना वोकल होना शुरू कर दिया कि हमारी बात का इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा अपने माशरे में, उस दिन एमनेस्टी को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी काम करने के लिए. उसको ज़रूरत ही, क्योंकि जब शर्मीन उबैद चनोय जो है वो एक फ़िल्म बनाती है तो हमें तकलीफ होती है कि वो जो है पाकिस्तान को जो है वो डिफेम कर रही है, या
वो
उसके
पॉइंटलेस वो क्रिटिसिज्म थी उनके ऊपर. यानी ज़ाहिर सी बात है कि इशू है, अगर उन्होंने फिल्म बनाई है तो हमें
लेकिन थी,
हमें
एक बहुत बड़ा, ये हिपोक्रेसी भी थी, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर कोई बंदा कोई सोशलिस्ट पर रेस करता है, जैसे अभी दीपिका की पता नहीं कोई मूवी आई थी, वो भी वायरल इसलिए हुई थी क्योंकि वो जब पहले उसने जाके जेएनयू के प्रेसिडेंट से मिली तो फिर वहाँ पे लोग उसको प्रेस कर रहे थे. बट एट द सेम टाइम अगर हमारा पाकिस्तान में कुछ होता था, फिर लोग आके बोलते हैं भाई ये क्या है, पाकिस्तान की पूरी इज्जत का पतंगड़ बन रहा है. नहीं, बट अगेन देखें, मेरा कहने का मकसद ये है, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये है कि जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट होता है ना, तो आई थिंक वो लोग नॉर्मली, उनकी स्ट्रेटजी होती है थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल. तो अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस है, तो उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ मेजर किया होगा. हाउ डू दे वॉन्ट टू पेनिट्रेट इन टू द पाकिस्तानी मार्केट, विथ वॉट वेज, विथ वॉट डिसेप्टिव वेज, कि आप इवेंचुअली उसके वो बन जाओगे.
हमने एक दफ़ा, हमने अपने एपिसोड में डिस्कस किए थे वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम, और हमने इस तरह के जो औरत मार्च और फलाने डिमकाने, और इस दफ़ा शायद औरत मार्च और बाकी आगे आने वाली जिस किस्म की मूवमेंट्स या जो कैंपेन्स होती हैं, इसके पीछे आपको कुछ जो है ना, क्या मोटिव्स हैं, कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या एक्चुअल एजेंडा क्या है, शायद जो उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं या उसके अंदर जो मेन काम करने वाले हैं, इवन दे देमसेल्व्स डोंट नो, दे डोंट रियलाइज कि वो किस तरह यूज़ हो रहे होंगे. आई डोंट से कि जिस तबके का जो भी इशू है अगर वो खड़ा रेज करना चाहे, ही शुड बी अलाउड टू रेज दोज इश्यूज. और हमारा अगर उससे इख्तलाफ है तो हमें उसको ऑन द फेस लेना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए. लेकिन वी डोंट अप्रूव या वी डोंट, वी शुडंट क्या कहते हैं, गिव लीवे कि आप यूज होना शुरू हो जाए किसी थर्ड पार्टी के थ्रू और लोगों के सामने पर्दा डलाओ कि ये जो सामने बंदा है ना, ये जेन्युइन बंदा नहीं है. इसके पीछे एक और एजेंडा
प्रोग्राम मिसाल के तौर पे, यानी जो हमारे विकीलीक्स केबल के अंदर आया था कि फजलुर रहमान साहब जाके मिल रहे हैं यूएस एम्बेसी के अंदर और उनसे कह रहे हैं, फजलुर रहमान भी मिल रहे हैं और भी पार्टी पीपल्स पार्टी भी जाकर मिल रही है,
मुशर्रफ साहब गए, मुशर्रफ साहब
तो वो सब जाकर ना बैकडोर डीलिंग कर रहे हैं कि यार हमें सपोर्ट करें, यूएस से कह रहे हैं हमें सपोर्ट करें ताकि हम पावर में आए और हम आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे. तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप किसी और का एजेंडा पुश करने के लिए, आप पैसे लेने के लिए आप करें. लेकिन यानी एक बहुत लंबी बहस है मेरे ख्याल से ये, तो इस पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता.
बट एट द सेम एट द एंड ऑफ द डे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो भी पॉइंट्स रेज किए दीज, मैं तो ऑन अ पर्सनल लेवल बाकी सब लोग, ये तीनों इश्यूज मेरे लिए नॉन इश्यूज हैं एंड मैं इनसे इख्तलाफ भी करता हूँ. एज आई डोंट कंसिडर देम एज इन देयर वैल्यू, एज अ सेट ऑफ वैल्यूज ये मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट जाती हैं. ये एक सेपरेट इशू है कि जो होमोसेक्सुअल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ जो भी अब्यूज़ होता है, वट एवर, दैट इज़ अ सेपरेट इशू. बट सेम सेक्स मैरिज शुड बी कंसीडर्ड अ राइट, नो इट शुडंट कंसीडर लीगल
राइट. डू यू फील वुमेन राइट्स इज एन इशू इन पाकिस्तान?
डेफिनेटली, डेफिनेटली. बट वट डू आई कंसिडर टू बी वुमेन राइट्स? वट डज पाकिस्तानी औरत क्या समझती है कि उसके इशूज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं? और एक अमेरिका में या बर्तानिया में एक औरत जो बैठी हुई है वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बैठी हुई है, वो क्या समझती है कि पाकिस्तानी औरत का वुमेन राइट क्या होना चाहिए? वो डिफाइन करेगी? नहीं. आई थिंक दीज आर सेपरेट इश्यूज़ एंड वी शुड लुक एट देम. और हमें भी अपने जो हम समझते हैं कि यूके, अमेरिका, भारत, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या क्या ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम्स होने चाहिए, वी शुड बी अलाउड टू से दैट. वो ठीक है कि पहले हमें अपना मुल्क का हाल खुद ठीक करना पड़ेगा ताकि वी हैव समथिंग टू स्टैंड ऑन. हमारी खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. उन इश्यूज़ को लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन करें, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी. हाँ, ये अवेयरनेस पैदा करने के बजाय कि फैमिली प्लानिंग होनी है, बच्चे कम पैदा करो फलाने की जगह, ये करें कि जो इश्यूज़ जो लोग ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं
उनके साथ
जो इशूज़ हो रहे
हैं
उनके हकूक उनको दिए जाए, उनके साथ जो जिस तरीके के मामला होने चाहिए, अब्यूज़ ना हो, वो सारी चीज़ें.
ये तो माइक ड्रॉप बात कर दिया आपने, इसके बाद कुछ बोलना बनता नहीं है. बहरहाल, हमने बहुत सारे लोगों को शार्ट आउट दिया, हमारे पास जो फीडबैक आया वो बहुत अच्छा था. और हमने शुरू में भी कहा ये फीडबैक ही है जिसकी वजह से आज भी हम ये एपिसोड कर रहे हैं. और उम्मीद है कि जो हम इसके बाद वाली जो एपिसोड होगी वो शायद हमारी लास्ट एपिसोड होगी, उसके बाद ये सीज़न एंड हो जाएगा. और नेक्स्ट सीज़न
के बाद वाली, यानी एक दो एपिसोड्स
हैं तो उसके बाद नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा कुछ ब्रेक के बाद. और उसके अंदर हमने बहुत सारी नई चीज़ें कुछ प्लान की हैं, बहुत हम खुद भी उसके लिए एक्साइटेड हैं. और हम समझते हैं कि जो फीडबैक हमें आया उसी की बेस पे हमने उसको दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हैं. तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कहाँ पे इंस्टाग्राम पे लव कर सकते हैं.
लव कर सकते हैं,
कैसा अल्फाज इस्तेमाल किया
ये एमएसटी का बंदा बैठा हुआ है, ये एमएसटी के रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है
हमारा. मैंने कहा मेरा डिसेप्टिव वेज है, मैंने
लव के बारे में नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं.
शायर कहता है मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे.
सही है,
तो वही वाली बात है.
वो क्या मुझे भी आगे शायरी नहीं समझ आई, नुसरत फतेह अली खान का क्या था कि मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान.
मोहब्बत पाकिस्तान है और जो है वो जो आशिक हैं वो पाकिस्तानी हैं. माशूक.
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग. अंटिल देन,
नहीं उससे पहले मेरे ख्याल से हम जो रेगुलर अपना एक है कि आप अगर एप्पल में सुन रहे हैं तो हमें प्लीज़ वहाँ पे रेट करें, या कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में सुन रहे हैं,
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो
और रीच आउट करें. कोई भी सजेशन है आपके पास, आइडियाज़ हैं, टॉपिक्स हैं, आप हमें कम्युनिकेट करें. क्रिटिक है बिल्कुल कम्युनिकेट करें. आप हमारी हर राय से एग्री नहीं कर सकते, यानी लाइकली है बल्कि यानी सर्टेनली आप हमारी हर राय से एग्री नहीं करते. तो अगर डिसएग्री करते हैं आप बताएं किससे डिसएग्री करते हैं, हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर. तो
हमें ईमेल कर सकते हैं,
ईमेल कर सकते हैं,
ओपनली नहीं भी बात करनी इसके ऊपर.
हमें और बहुत सारे पॉडकास्टर्स की तरफ से भी जो है वो फीडबैक आ रहा है, तो हम उसको भी वेलकम करते हैं. एक तरह से हमारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, लेकिन हम फीडबैक जो है
मैं उसी पे शुरू पे बात कर रहा था जो आगे हमें मेरे ख्याल से एक वी शुड गेट इन टच विद ऑल दीस पॉडकास्ट जितने भी कर रहे हैं. हमें जिस तरह यूट्यूब कम्युनिटी है ना, तो पाकिस्तानी पॉडकास्ट कम्युनिटी एक होनी चाहिए.
वी आर ओपन, आवर ईमेल्स आर.
तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई पॉडकास्ट अगर हमें सुन रहा है, कोई और पॉडकास्ट, तो हम
पॉडकास्टर सुन रहे
हैं, तो हम मिलकर एक कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे पॉडकास्ट जितनी इनिशिएटिव्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें. और चलिए अगर पॉडकास्ट मीडियम एज अ होल पाकिस्तान के अंदर ग्रो करेगा तो एवरीवन विल बेनिफिट.
एंड यू कांट डिनाई द फैक्ट कि ग्रो हो रहा है पाकिस्तान में.
ऑडियंस
बढ़ रही है. And just like in every other part of the world, मतलब podcast की अपनी एक importance निकली है.
ये तो हमने establish कर लिया कि पाकिस्तानी board से तो कोई कुछ हासिल नहीं कर पा रहा.
Boot क्या कह रहे हैं?
पाकिस्तानी board से और boot से दोनों से.
Boot ही सवाल है हर किसी के ज़हन में.
Boot ही सवाल है. तो वो हासिल नहीं हो रहा. और एक
Cambridge वजन ज़्यादा हो गया
या UK based system, उसके अपने मसले मसाइल हैं. तो थर्ड ऑप्शन पॉडकास्ट के थ्रू हमें करना पड़ेगा. वी नीड टू एजुकेट पीपल थ्रू दिस.
मे बी वी कैन हैव पॉडकास्ट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. हम लोग यहाँ पे लोग एजुकेट कर रहे हैं.
मुझे डर है कि ये पॉडकास्ट के ऊपर भी बूट्स ना आ
जाए. पॉडकास्ट ये होगा पॉडकास्ट बोर्ड एजुकेशन सिस्टम.
एनीहाउ वो फिर हम होम स्कूलिंग की तरफ चले जाएंगे, व्हिच इज अनदर इशू विद अनदर.
अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, अस्सलाम वालेकुम.
सलाम फ्रॉम द चौक.